सभा समाप्त हो चुकी थी। विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में बाहर निकल रहे थे। किसी के चेहरे पर उत्साह था, किसी के चेहरे पर भय, लेकिन अर्जुन अभी भी उसी स्थान पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी झुकी हुई थीं और उसका मन तेजी से सोच रहा था। उसने धीरे से मन ही मन कहा, ऐसे मंदिरों में हमेशा खतरा होता है। उसकी आंखों में पिछले जन्म की यादें हल्की हल्की चमक उठीं। वो एक ऐसा व्यक्ति रह चुका था जिसने राज्यों पर शासन किया था, युद्ध देखे थे और ऐसे कई रहस्यमय स्थानों के बारे में सुना था। अर्जुन ने अपने मन में सोचा, हर मंदिर देवताओं के लिए नहीं होता। कुछ मंदिर दानवों के लिए बनाए गए थे। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की। और कुछ मंदिर देवताओं के सबसे गंदे प्रयोगों के लिए। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे वो खुद से बात कर रहा हो। उसने अपने सामने बैठे कुछ विद्यार्थियों को देखा जो अभी भी उत्साह में बातें कर रहे थे। अगर हमें वरदान मिल गया तो, सुना है वहां प्राचीन खजाने भी हैं। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, मूर्ख, उसने मन ही मन कहा। जहां इतना बड़ा वरदान छिपा हो, वहां मौत भी उतनी ही बड़ी होती है। उसके मन में कई पुराने दृश्य घूम गए। कुछ मंदिर ऐसे थे जहां दानवों को कैद किया गया था। कुछ मंदिर ऐसे थे जहां देवताओं ने अपनी असफल साधनाएं छिपा दी थीं। और कुछ मंदिर जहां केवल मौत और पागलपन मिलता था। अर्जुन की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। अनंत रहस्येश्वर मंदिर, तू आखिर है क्या? उसने गहरी सांस ली। मुझे इसकी सच्चाई पता लगानी होगी। लेकिन उसी क्षण उसके मन में दूसरा विचार आया। पर कैसे, गुरुकुल के आचार्य इतने बड़े रहस्य किसी विद्यार्थी को यूं ही आसानी से नहीं बताते? ये भी निश्चित नहीं था कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता भी है या नहीं। और अगर उसने बहुत अधिक प्रश्न पूछे तो लोगों का संदेह उस पर और भी गहरा हो सकता था। अर्जुन कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। गुरुकुल में आचार्य ही सब कुछ नहीं जानते, उसने मन ही मन कहा। यहां पुस्तकालय भी है। गुरुकुल का पुस्तकालय बहुत विशाल था। वहां हजारों वर्षों के ग्रंथ रखे हुए थे। कई ऐसे रहस्य भी थे जिन्हें आचार्य भी शायद भूल चुके थे। और अर्जुन को एक और बात याद थी, गुरुकुल के सबसे पुराने हिस्से में एक प्रतिबंधित ग्रंथ कक्ष भी था जहां केवल वरिष्ठ आचार्य ही जा सकते थे। अर्जुन धीरे से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब पहले जैसी शांति नहीं थी, वहां अब जिज्ञासा और योजना दोनों थे। अगर इस मंदिर का सच कहीं छिपा है तो वो उन ग्रंथों में ही होगा। उसने धीरे से अपने वस्त्र ठीक किए और कक्षा से बाहर निकल गया। बाहर हवा हल्की ठंडी थी, विद्यार्थी अभी भी मंदिर की बातें कर रहे थे। लेकिन अर्जुन बिना किसी की ओर देखे आगे बढ़ गया। उसका लक्ष्य अब स्पष्ट था, गुरुकुल का प्राचीन पुस्तकालय। क्योंकि अगर अनंत रहस्येश्वर मंदिर सच में उतना ही रहस्यमयी है तो उसके बारे में सच्चाई भी कहीं न कहीं जरूर लिखी होगी। और अर्जुन अब उस सच्चाई को ढूंढने जा रहा था। अंडस्को अर्जुन बिना किसी से बात किए सीधा अपनी कक्षा की ओर चला गया। गुरुकुल की पत्थर की लंबी गलियों में आज असामान्य चहल पहल थी। हर तरफ विद्यार्थियों के समूह खड़े होकर एक ही विषय पर चर्चा कर रहे थे, अनंत रहस्येश्वर मंदिर। किसी के चेहरे पर उत्साह था, किसी के भीतर भय, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में केवल लालच था। अर्जुन इन सबको बिना देखे आगे बढ़ता गया। वो कक्षा के विशाल कक्ष में प्रवेश कर गया। आज कक्षा का दृश्य सामान्य दिनों से बिल्कुल अलग था। जहां आमतौर पर 30-40 विद्यार्थी बैठते थे, आज वहां लगभग दोगुने विद्यार्थी मौजूद थे। कुछ दूसरे वर्गों के विद्यार्थी भी चुपचाप पीछे बैठ गए थे। सामने आचार्य अपने आसन पर बैठे थे और शांत स्वर में समझा रहे थे। मूलाधार चक्र साधना का प्रथम द्वार है। जब तक ये द्वार नहीं खुलता, तब तक कोई भी साधक ऊर्जा को सही प्रकार से संचालित नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी हथेली से एक छोटा सा ऊर्जा चक्र बनाकर दिखाया। ऊर्जा को नीचे रीढ़ के मूल में स्थिर करना सीखो। धैर्य के बिना ये चक्र कभी नहीं खुलता। कई विद्यार्थी बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन कुछ के चेहरों पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उनके मन में केवल एक ही बात थी, 3 महीने बाद खुलने वाला अनंत रहस्येश्वर मंदिर। पीछे बैठे 2 विद्यार्थी धीमी आवाज में बात कर रहे थे, अगर इस बार भी मेरा मूलाधार चक्र नहीं जागा तो मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा। दूसरे ने दांत भींचते हुए कहा, मैं चाहे कुछ भी करूं, इस बार इसे खोलकर रहूंगा। कक्षा में बैठे कई विद्यार्थी आंखें बंद करके वहीं साधना करने लगे। किसी के माथे पर पसीना आ गया था। कोई दांत भींचकर ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। आचार्य उन्हें देखते हुए बोले, जल्दबाजी मत करो। मूलाधार चक्र को बलपूर्वक खोलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी नाड़ियां टूट भी सकती हैं। लेकिन आज किसी को चेतावनी सुनने की फुर्सत नहीं थी। हर कोई मंदिर जाने का अवसर खोना नहीं चाहता था। अर्जुन चुपचाप अपनी जगह बैठ गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके भीतर की स्थिति बाकी विद्यार्थियों से बिल्कुल अलग थी। उसका मूलाधार चक्र पहले ही जाग चुका था और वहां केवल साधारण ऊर्जा नहीं थी। वहां स्वर्गीय काली अग्नि शांत रूप से जल रही थी और उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र में स्वर्गीय बिजली हल्की हल्की चमक रही थी। अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। वह बाहर से बिल्कुल एक साधारण विद्यार्थी की तरह दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर दो स्वर्गीय शक्तियां धीरे धीरे स्थिर हो रही थीं। उसे महसूस हुआ कि पिछले कुछ दिनों में उसकी ऊर्जा पहले से अधिक संतुलित हो गई है। काली अग्नि अब उतनी उग्र नहीं थी और स्वर्गीय बिजली भी उसके नियंत्रण में रहने लगी थी। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, अगर यह मंदिर सच में इतना खतरनाक है तो वहां जाने से पहले मुझे अपनी शक्ति और स्थिर करनी होगी। उसने धीरे से अपनी ऊर्जा को मूलाधार चक्र में स्थिर किया। काली अग्नि की हल्की गर्मी उसकी नाड़ियों में फैल गई। कुछ ही क्षणों में उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। लेकिन उसी समय कक्षा के दूसरे कोने में बैठा एक विद्यार्थी अर्जुन को ध्यान से देख रहा था। वो कोई आचार्य या साधक नहीं था, वह भी उसी गुरुकुल का एक सामान्य छात्र था। उसका नाम था नकुल। नकुल पिछले 2 वर्षों से गुरुकुल में पढ़ रहा था, लेकिन अभी तक उसका मूलाधार चक्र भी जागृत नहीं हुआ था। इस वजह से कई विद्यार्थी उसे कमजोर समझते थे, लेकिन उसकी एक खासियत थी, वह बहुत चालाक था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह गुप्त रूप से शर्वित के लिए अर्जुन पर नजर रखने का काम कर रहा था। नकुल की आंखें धीरे धीरे अर्जुन पर टिकी हुई थीं। ये लड़का, उसने मन ही मन सोचा, कुछ दिन पहले तक तो ये बिल्कुल साधारण था, लेकिन अब इसकी चाल, इसकी सांसें, सब कुछ अलग लग रहा है। उसे अर्जुन के शरीर से कोई स्पष्ट ऊर्जा महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि वो खुद अभी तक साधना के पहले चरण में भी प्रवेश नहीं कर पाया था। लेकिन फिर भी उसकी सहज बुद्धि उसे बार बार यही कह रही थी कि अर्जुन में कुछ बदल गया है। नकुल की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, उसने मन में सोचा, लेकिन अगर यह सच है तो मुझे ये खबर तुरंत पहुंचानी होगी। उधर अर्जुन अभी भी शांत बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसे यह हल्की सी निगाह महसूस हो चुकी थी। यह कोई साधारण निगाह नहीं थी, कोई उसे लगातार देख रहा था। अर्जुन ने बिना अपनी आंखें खोले ही अपनी साधना को बदल दिया। उसकी ऊर्जा अचानक बहुत धीमी और साधारण हो गई। अब उसकी साधना बिल्कुल वैसी दिख रही थी जैसी एक कमजोर विद्यार्थी की होती है जो कई वर्षों से मूलाधार चक्र जागृत करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ क्षण बाद अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नजर कक्षा में एक पल के लिए घूमी और फिर अनायास ही नकुल से टकरा गई। नकुल तुरंत घबरा गया और अपनी नजर दूसरी ओर घुमा ली, लेकिन उस एक पल में ही अर्जुन सब समझ गया था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो अब तुम लोग छात्रों को भी इस्तेमाल करने लगे हो, उसने मन ही मन कहा। अच्छा है, क्योंकि अर्जुन जानता था गुरुकुल के अंदर असली खतरा बाहर से नहीं, अंदर बैठे लोगों से था। और अगर कोई उस पर नजर रख रहा था तो इसका मतलब था कि उसके दुश्मन अभी भी उसे भूल नहीं पाए थे। अर्जुन ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अंडस्को वो आंखें बंद किए शांत बैठा था। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं, इतनी धीमी कि मानो वो सो गया हो, लेकिन वास्तव में वह गहरी साधना में डूबा हुआ था। उसकी चेतना अपने शरीर के भीतर उतर चुकी थी। वह अपने मूलाधार चक्र के पास बहती स्वर्गीय काली अग्नि को स्थिर कर रहा था और साथ ही स्वाधिष्ठान चक्र में कैद स्वर्गीय बिजली को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। ये कार्य अत्यंत कठिन था। जरा सी गलती और उसका शरीर भीतर से फट सकता था। लेकिन अर्जुन का चेहरा शांत था। उधर कक्षा में वातावरण बिल्कुल अलग था। आज सामान्य दिनों से कहीं अधिक विद्यार्थी उपस्थित थे, क्योंकि कुछ ही देर पहले जो घोषणा हुई थी अनंत रहस्येश्वर मंदिर की, उसने लगभग सभी छात्रों के मन में लालच और उत्साह जगा दिया था। लेकिन उस मंदिर में जाने की पहली शर्त थी मूलाधार चक्र का जागृत होना,
और यही वजह थी कि आज कई विद्यार्थी अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर साधना करने की कोशिश कर रहे थे।
कक्षा के बीच में बैठा एक छात्र विवेक अपने दांत भींचे बैठा था।
उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने मन ही मन कहा, मुझे किसी भी हाल में अपना मूलाधार चक्र खोलना ही होगा।
अगर मैं इस अवसर को खो दूंगा तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा।
उसने अचानक अपने भीतर की ऊर्जा को जोर से नीचे धकेला।
उसके शरीर के आसपास की ऊर्जा तेजी से कांपने लगी। पहले कुछ क्षण तक सब सामान्य लगा, लेकिन फिर उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके माथे पर पसीना आने लगा
और अगले ही पल उसकी दर्द भरी चीख पूरी कक्षा में गूंज उठी।
सभी विद्यार्थी चौंक गए। विवेक का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। उसके आसपास की हवा भारी हो गई।
उसकी नसें नीली होकर उभर आईं। रुको, अपनी ऊर्जा को रोको,
एक आचार्य तुरंत चिल्लाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विवेक ने जल्दबाजी में अपने शरीर की सीमाओं से कहीं अधिक ऊर्जा को जगाने की कोशिश की थी।
उसकी साधना विकृत हो चुकी थी। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से हल्का खून निकल आया।
कक्षा में बैठे कई विद्यार्थी घबरा गए। कुछ विद्यार्थी पीछे हट गए।
तभी 2 आचार्य तुरंत आगे आए। उनमें से एक ने उसके माथे पर हाथ रखा और अपनी ऊर्जा उसके शरीर में भेजी।
कुछ क्षण बाद विवेक का शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन उसकी सांसें अभी भी बहुत कमजोर थीं। आचार्य ने गहरी सांस ली।
मूर्ख लड़का, उन्होंने धीरे से कहा, साधना लालच से नहीं होती, धैर्य से होती है।
दो वरिष्ठ विद्यार्थियों को बुलाया गया, इसे चिकित्सालय ले जाओ।
विवेक को उठाकर कक्षा से बाहर ले जाया गया। पूरी कक्षा कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गई।
कई विद्यार्थियों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्होंने अभी अभी देख लिया था जल्दबाजी में की गई साधना कितनी खतरनाक हो सकती है।
तभी मुख्य आचार्य तेजी से वहां पहुंचे। उनकी आंखों में कठोरता और चिंता दोनों झलक रही थी।
उन्होंने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति से विवेक की ऊर्जा को संतुलित किया और उसकी जान बचा ली। हालांकि मुख्य आचार्य ने उसका इलाज कर दिया, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने गुरुकुल में कठोर नियम लागू कर दिए।
उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, साधना कोई खेल नहीं है। जो व्यक्ति अधीरता में चक्र खोलने की कोशिश करेगा, उसका परिणाम आज विवेक जैसा ही होगा।
विवेक की जान तो बच गई थी, लेकिन अब उसे अपनी साधना फिर से शुरुआत से शुरू करनी होगी।
लेकिन इस पूरे समय अर्जुन अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर बैठा रहा।
उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। यही समस्या है, उसने मन ही मन सोचा, लोग शक्ति चाहते हैं, लेकिन उसके नियमों का सम्मान नहीं करते।
उसकी चेतना फिर से उसके चक्रों की ओर लौट गई और उसकी साधना पहले से भी अधिक गहरी हो गई।
लेकिन कक्षा के कोने में बैठा नकुल अभी भी अर्जुन को देख रहा था और उसके मन में एक नया संदेह जन्म ले चुका था। इतना बड़ा हादसा हुआ और ये लड़का जरा भी नहीं हिला। नकुल की आंखें धीरे धीरे संकरी हो गईं। ये सच में उतना कमजोर है जितना ये दिखता है,
या ये केवल अभिनय कर रहा है? अंडिस्को, मुख्य आचार्य ने विवेक का इलाज तो कर दिया था, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए उसे गुरुकुल के चिकित्सालय भेज दिया गया ताकि उसकी और जांच की जा सके।
दो वरिष्ठ विद्यार्थी विवेक को सहारा देकर ध्यान कक्ष से बाहर ले गए। कमरे में अभी भी भारी सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ विद्यार्थी डरे हुए थे तो कुछ अपनी साधना में लौटने की कोशिश कर रहे थे।
मुख्य आचार्य भी वहां से जाने ही वाले थे। उन्होंने मुड़कर एक बार पूरी कक्षा पर नजर डाली, मानो ये सुनिश्चित कर रहे हों कि अब सब कुछ सामान्य है।
लेकिन तभी उनकी दृष्टि अचानक अर्जुन पर जाकर ठहर गई। अर्जुन अभी भी अपनी जगह पर शांत बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी सांसें अत्यंत स्थिर थीं। बाहरी हलचल से मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था।
मुख्य आचार्य की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं, क्योंकि अर्जुन के चारों ओर की ऊर्जा सामान्य नहीं थी।
उसे महसूस हो रहा था कि अर्जुन के मूलाधार चक्र के पास ऊर्जा असामान्य रूप से तीव्र गति से घूम रही है, मानो वहां कोई सुप्त शक्ति धीरे धीरे जागने की तैयारी कर रही हो। मुख्य आचार्य कुछ क्षणों के लिए वहीं खड़े रह गए। उनकी आंखों में आश्चर्य झलक उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये कैसे संभव है? अर्जुन तो अभी प्रारंभिक साधकों में से है, फिर उसके मूलाधार चक्र की ऊर्जा इतनी स्थिर और शक्तिशाली कैसे हो सकती है? पूरी कक्षा में किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन उस पल मुख्य आचार्य समझ गए थे कि अर्जुन साधारण विद्यार्थी नहीं है। फिर वह अपना सिर हिलाकर वहां से चले गए। अंडिस्को अर्जुन ध्यान मुद्रा में शांत बैठा था। कक्षा में फिर से साधना शुरू हो चुकी थी, लेकिन विवेक की घटना के कारण वातावरण में हल्का भय और तनाव अभी भी मौजूद था। अर्जुन की सांसें धीरे धीरे गहरी होती जा रही थीं। उसका मन पूरी तरह भीतर की ओर उतर चुका था। धीरे धीरे उसकी चेतना शरीर के सबसे निचले बिंदु पर केंद्रित होने लगी। मूलाधार चक्र, शुरुआत में वहां केवल हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी, मानो धरती की गहराई में कोई छोटी सी चिंगारी सुलग रही हो।
लेकिन अगले ही पल वह चिंगारी अचानक तेज हो गई। अर्जुन के शरीर के भीतर एक गहरी लाल ऊर्जा घूमने लगी।
उसकी गति धीरे धीरे बढ़ती गई। अर्जुन का मन क्षणभर के लिए डगमगा गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की धरती अचानक भारी हो गई हो। उसकी रीढ़ के निचले हिस्से से एक अजीब सी कंपन पूरे शरीर में फैलने लगी। फिर अचानक धक, एक तेज ऊर्जा स्पंदन उसके भीतर गूंज उठा। उसी क्षण अर्जुन का मूलाधार चक्र पूरी तरह चमक उठा। एक गहरा रक्तिम प्रकाश उसकी चेतना में फैल गया, मानो उसके भीतर कोई प्राचीन द्वार खुल गया हो। अर्जुन की सांस एक पल के लिए रुक गई। उसकी चेतना के सामने एक अजीब दृश्य उभरने लगा। अंधेरा, अंडिस्को बहुत गहरा अंधेरा, और उस अंधेरे के बीच एक विशाल प्राचीन मंदिर। वही मंदिर, अनंत रहस्येश्वर मंदिर। मंदिर के विशाल द्वार पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे, और उन चिन्हों से वही लाल ऊर्जा निकल रही थी जो अभी अर्जुन के मूलाधार चक्र में घूम रही थी। अर्जुन के मन में अचानक एक आवाज गूंजी, उत्तर यहां छिपे हैं। अर्जुन की आंखें अचानक खुल गईं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन बाहर से देखने पर वह अभी भी बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। दूसरी ओर मुख्य आचार्य की आंखें फैल चुकी थीं। उन्होंने साफ महसूस किया था, अर्जुन का मूलाधार चक्र अभी अभी पूर्ण रूप से जागृत हुआ है। मुख्य आचार्य के मन में एक ही विचार गूंजा, ये लड़का, चलो आखिरकार इससे पीछा छूटा। 3 साल बाद इसने अपना पहला साधना चरण तो पूरा कर ही लिया। उधर अर्जुन धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींचते हुए मन ही मन सोच रहा था, तो ये सच है, अनंत रहस्येश्वर मंदिर सिर्फ एक साधारण मंदिर नहीं है। वहां कुछ जाग रहा है और शायद उस रहस्य का संबंध विद्यार्थियों के मूलाधार चक्र से ही था। नहीं तो उसे अनंत रहस्येश्वर मंदिर की दिशा में वे अजीब दृश्य क्यों दिखाई देते? अर्जुन को याद आया, जब कोई साधक अपने किसी चक्र को जागृत करता है तो कभी कभी उसे भविष्य की धुंधली झलकियां दिखाई देने लगती हैं। शायद जो वह देख रहा था वही उन भविष्य की झलकियों में से एक था। अंधस्को मुख्य आचार्य कुछ क्षण तक अर्जुन को देखते रहे। उनकी आंखों में हल्का आश्चर्य था लेकिन चेहरा फिर भी शांत था। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, अब तुम्हारा यहाँ का पहला लक्ष्य पूरा हो गया है। कक्षा में बैठे कई विद्यार्थियों ने यह बात सुनी तो उनके चेहरे तुरंत अर्जुन की ओर मुड़ गए। मुख्य आचार्य आगे बोले, तुम्हारा मूलाधार चक्र जागृत हो चुका है। जैसे ही यह शब्द कक्षा में गूंजे वहां हल्की फुसफुसाहट फैल गई। कई विद्यार्थियों की आंखों में हैरानी थी, कुछ के चेहरों पर ईर्ष्या की झलक भी दिखाई दे रही थी। यहां तक कि कक्षा के अध्यापक भी एक पल के लिए अर्जुन को देखने लगे। गुरुकुल में मूलाधार चक्र का पूर्ण जागरण कोई साधारण बात नहीं थी। कई लोग तो पूरी जिंदगी के बाद भी इसे जागृत नहीं कर पाते थे। मुख्य आचार्य धीरे धीरे अर्जुन के पास आए। उन्होंने अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा और कहा, लेकिन यह मत समझना कि तुमने बहुत बड़ी मंजिल पा ली है। अर्जुन शांत खड़ा रहा। मुख्य आचार्य बोले, तुम अभी केवल साधना के पहले द्वार तक पहुंचे हो। तुम्हें अभी युद्ध विद्या सीखनी है, अपने शरीर को मजबूत बनाना है और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना है। उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, और हाँ, ये भी मत सोचना कि अनंत रहस्येश्वर मंदिर में जाने के बाद तुम अपराजित हो जाओगे। कक्षा का माहौल अचानक गंभीर हो गया। उस स्थान पर ऐसे खतरे हैं, मुख्य आचार्य धीरे बोले, जिनके कारण कई विद्यार्थी कभी वापस नहीं लौटे। कुछ विद्यार्थियों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। मुख्य आचार्य ने फिर अर्जुन के सिर पर हल्का हाथ रखा, इसलिए अपना ध्यान रखना। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ बोले, और मेहनत करते रहो। अर्जुन चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। मुख्य आचार्य ने आगे कहा, 3 साल में तुमने एक चक्र जागृत किया है, यह अच्छी बात है लेकिन पर्याप्त नहीं। उन्होंने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, अगर तुम इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो बाकी चक्रों को जागृत करने में तुम्हें कई साल लग जाएंगे। उनकी आंखें गहरी हो गईं, लेकिन ये दुनिया तुम्हें इतना समय नहीं देगी। कक्षा पूरी तरह शांत हो गई, इसलिए उन्होंने अर्जुन के सिर पर हल्की थपकी दी। दूसरों से ज्यादा मेहनत करो, इतना कहकर मुख्य आचार्य मुड़े और धीरे धीरे कक्षा से बाहर चले गए। उनके जाते ही कक्षा में हल्की हलचल शुरू हो गई। कई विद्यार्थी अभी भी अर्जुन को देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर प्रशंसा थी, कुछ के चेहरों पर ईर्ष्या। तभी कक्षा के अध्यापक आगे आए। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसकी नाड़ी की जांच की। फिर उन्होंने अपनी चेतना से उसके मूलाधार चक्र की स्थिति को महसूस किया। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, चक्र जागृत तो हो गया है और ऊर्जा भी स्थिर लग रही है। फिर उन्होंने हल्का सिर हिलाया, लेकिन फिर भी सावधानी जरूरी है। उन्होंने अर्जुन को पास बैठने का संकेत दिया, आज के बाकी समय तुम आराम करो। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। अध्यापक ने आगे कहा, कल से तुम्हें मूलाधार चक्र को स्थिर करने की साधना करनी होगी। उन्होंने अपनी मेज से एक छोटा पन्ना उठाया और उस पर कुछ लिखने लगे। इन औषधियों का सेवन करना होगा, उन्होंने अर्जुन को पन्ना देते हुए कहा। अश्वगंधा, नागकेसर और रक्तगंधा जड़, इन तीनों को निश्चित अनुपात में मिलाकर सेवन करना है। अर्जुन ने पन्ना ध्यान से देखा। अध्यापक आगे बोले, सुबह और रात गुनगुने जल के साथ। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इससे तुम्हारा मूलाधार चक्र पूरी तरह स्थिर होगा और तुम्हारी ऊर्जा स्रोत भी संतुलित हो जाएगी। उन्होंने अंतिम बार अर्जुन को देखा। ध्यान रखना, चक्र जागृत करना कठिन है लेकिन उसे स्थिर रखना उससे भी ज्यादा कठिन। अर्जुन ने धीरे से सिर झुका दिया, लेकिन उसके मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। क्योंकि उसे अभी भी याद था वह अजीब दृश्य, वह प्राचीन मंदिर और वह रहस्यमय आवाज, उत्तर यहां छिपे हैं। अर्जुन की मुट्ठी धीरे धीरे भींज गई। उसे महसूस हो रहा था अनंत रहस्येश्वर मंदिर में कुछ असाधारण चीज हो सकती है और आने वाले 3 महीने शायद उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाले थे। अंधस्को अर्जुन ने आचार्य की बात ध्यान से सुनी और धीरे से सिर हिला दिया। जी आचार्य, उसके स्वर में न कोई उत्साह था और न ही कोई घमंड, बस एक शांत स्वीकार। कक्षा समाप्त होने के बाद अधिकांश विद्यार्थी आपस में बात करते हुए बाहर निकल गए, लेकिन अर्जुन सीधे अपने कक्ष की ओर नहीं गया। उसके कदम गुरुकुल के पुराने पुस्तकालय की ओर मुड़ गए। गुरुकुल का वो पुस्तकालय साधारण स्थान नहीं था, वह 200 वर्षों पुराने ग्रंथों से भरा हुआ था। कहा जाता था कि यहां ऐसी ऐसी विद्या लिखी हुई है जो अब संसार से लगभग खो चुकी है। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया। अंदर हल्की धूप खिड़कियों से छनकर आ रही थी और हवा में पुराने कागजों और औषधीय स्याही की हल्की गंध थी। वो सीधे उस हिस्से में गया जहां प्राचीन इतिहास के ग्रंथ रखे हुए थे। काफी देर तक खोजने के बाद उसे एक मोटा धूल से ढका हुआ ग्रंथ मिला। ग्रंथ का नाम था अनंत रहस्येश्वर मंदिर का इतिहास। अर्जुन की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने तुरंत ग्रंथ खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। पन्नों में कई पुराने चित्र बने हुए थे और उन चित्रों के नीचे कुछ नाम लिखे हुए थे। उन नामों को पढ़ते ही अर्जुन का ध्यान और गहरा हो गया। ग्रंथ में लिखा था महाराज वीरभद्र महारानी कल्याणी। इन दोनों के बारे में लिखा था कि मंदिर से लौटने के बाद उन्होंने एक ऐसे शत्रु राज्य को पराजित किया था जिसे उस समय अजेय माना जाता था। अर्जुन ने अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था महाराज विक्रम और उनकी दो पत्नियां कौशल और कोमल। इन तीनों ने मिलकर अपने समय में ऐसे दानवों के समूह का संहार किया था जिन्होंने कई राज्यों में आतंक फैला रखा था। अर्जुन का माथा हल्का सिकुड़ गया। उसने अगला पन्ना खोला। वहां लिखा था राजकुमार अभिनव और उनकी तीन पत्नियां ऋतु सीमा और कामनी। ग्रंथ के अनुसार इन लोगों ने ऐसे नए मंत्रों का आविष्कार किया था जो उस समय तक अस्तित्व में ही नहीं थे। अर्जुन धीरे धीरे पन्ने पलटता गया। हर कहानी लगभग एक जैसी थी। जो भी व्यक्ति अनंत रहस्येश्वर मंदिर से बाहर आया था उसने संसार में कोई न कोई महान कार्य किया था, लेकिन फिर भी एक बात साफ नहीं थी। अर्जुन ने धीरे से पन्ना बंद किया। उसके मन में सवाल घूम रहा था, इस मंदिर का इन सबसे क्या संबंध है? ऐसा कौन सा वरदान मिलता है वहां जिसके बाद कोई साधारण व्यक्ति भी इतिहास बदल देता है? वो कुछ देर तक उसी विचार में बैठा रहा, लेकिन तभी उसे ये पता नहीं था कि पुस्तकालय में वह अकेला नहीं था। एक और व्यक्ति वहां मौजूद था। वह चुपचाप एक स्तंभ के पीछे खड़ी थी। वह थी माधवी। काफी समय से उसने अर्जुन से बात नहीं की थी, लेकिन आज जब उसने अर्जुन को यहां इतने ध्यान से ग्रंथ पढ़ते हुए देखा तो उसकी जिज्ञासा खुद को रोक नहीं पाई। वह धीरे धीरे चलकर अर्जुन के पास आकर बैठ गई, लेकिन अर्जुन इतना मग्न था कि उसने उसे आते हुए देखा ही नहीं। जैसे ही अर्जुन अगला पन्ना पलटने वाला था, माधवी ने अचानक ग्रंथ पकड़ लिया। अर्जुन का हाथ रुक गया। तुम क्या पढ़ रहे हो? अर्जुन ने सामने देखा। माधवी, कुछ क्षण दोनों की आंखें मिली, लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने बिना कुछ बोले नजर वापस ग्रंथ पर डाल दी। माधवी को यह सीधा सीधा अपमान लगा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अच्छा, उसने धीमे लेकिन गुस्से भरे स्वर में कहा, अब बात करना भी जरूरी नहीं समझते तुम? अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी चुप्पी ने माधवी को और ज्यादा नाराज कर दिया। वह अचानक खड़ी हुई और तेज कदमों से पुस्तकालय से बाहर चली गई। अर्जुन ने एक बार उसकी ओर देखा, लेकिन फिर वापस ग्रंथ पढ़ने लगा। काफी देर तक वह अलग अलग ग्रंथ पढ़ता रहा, लेकिन उसे अनंत रहस्येश्वर मंदिर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। उसे बस एक महत्वपूर्ण बात पता चली। मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले हर साधक को एक वचन लेना पड़ता था कि वो मंदिर के अंदर देखे गए किसी भी रहस्य को बाहर किसी को नहीं बताएगा। अगर वह वचन तोड़ता है तो उसका वरदान तुरंत समाप्त हो जाता है। यही कारण था कि पूरे संसार में उस मंदिर के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी। अर्जुन ने धीरे से ग्रंथ बंद कर दिया। तो यही कारण है, वो मन ही मन बोला, कोई भी उसके रहस्य के बारे में नहीं जानता। वह धीरे धीरे उठा और सभी ग्रंथ वापस अपनी जगह रखने लगा। जब वो पुस्तकालय से बाहर जाने वाला था तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां सोने का एक कड़ा गिरा हुआ था। वह साफ तौर पर किसी स्त्री का आभूषण था। अर्जुन ने उसे उठाया, कुछ पल उसे देखा, फिर उसके चेहरे पर हल्की समझ की झलक आए। ये शायद माधवी का है, शायद गुस्से में जाते समय उसने ध्यान नहीं दिया होगा। अर्जुन ने कड़ा अपनी मुट्ठी में रख लिया, लेकिन तभी उसकी नजर पुस्तकालय के एक दूसरे हिस्से पर पड़ी। वह हिस्सा था निषिद्ध पुस्तकालय। वहां मोटे लोहे के दरवाजे लगे थे। उनके पीछे ऐसे ग्रंथ रखे थे जिनके बारे में कहा जाता था कि कुछ मंत्र श्रापित होते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें अगर कोई अधूरा पढ़ ले तो उसका मन टूट सकता है, वह पागल भी हो सकता है। अर्जुन ने कुछ पल उस दरवाजे को देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। सिर्फ एक मूलाधार चक्र के साथ यहां आना मूर्खता होगी। उसने मुड़कर पुस्तकालय से बाहर कदम रखा, फिर धीरे धीरे अपने कक्ष की ओर चल पड़ा। लेकिन उसके मन में एक बात साफ थी, अनंत रहस्येश्वर मंदिर का रहस्य अभी भी उससे छिपा हुआ था, और शायद उस रहस्य को जानने का एकमात्र रास्ता था स्वयं उस मंदिर के अंदर जाना।